नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं जया भारती। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 29 सितंबर को इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार महासभा में चर्चा का केंद्र बन गया है। नाइजर के तिलाबेरी क्षेत्र के गांव में बंदूकधारियों ने हिंसक हमले में 22 लोगों की हत्या की। विश्व के कई नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। और महिला क्रिकेट में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 102 रन से हराया, 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर। और अब समाचार विस्तार से। दुनिया में जारी उथल पुथल के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनी रहेगी। अमेरिका की क्रेडिट और रेटिंग एजेंसी स्टैंडर्ड एंड पुअर्स के अनुसार भारत की जीडीपी मौजूदा वित्त वर्ष में 6.5% की दर से आगे बढ़ती रहेगी। एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के विकास प्रदर्शन में लचीलापन बना हुआ है। हालांकि भारी झटकों ने देश के समक्ष थोड़े समय के लिए चुनौतियां पैदा की हैं। भारत ने आर्थिक सुधारों, ढांचागत विकास और नीतिगत सुधारों को अपनाकर विकसित देशों के मुकाबले विकास की रफ्तार बनाए रखा है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू को इस महीने की 29 तारीख को व्हाइट हाउस आमंत्रित किया है। नेतन्याहू ने यरूशलम में एक संवाददाता सम्मेलन में राष्ट्रपति ट्रंप के निमंत्रण की घोषणा की। एक रिपोर्ट।
प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने इसराइल के सेना से गाजा शहर में प्रवेश के दौरान बंधकों की सुरक्षा को लेकर हमास को चेतावनी भी दी। यह संवाददाता सम्मेलन इसराइल की अर्थव्यवस्था की स्थिति पर बुलाया गया था। नेतन्याहू ने इससे पहले कहा था कि देश को तेजी से आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता होगी। हालांकि बाद में उन्होंने स्पष्टीकरण जारी करके कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने की आवश्यकता है। देश अब आर्थिक प्रतिबंधों का सामना कर रहा है जिसमें हथियारों की बिक्री भी शामिल है। इसराइल के प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय आया है जब इसराइल सेना ने गाजा शहर पर कब्जे के लिए बड़े पैमाने पर हमला किया है। विश्व दर्पण के लिए मैं अमीशा।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने कहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार चर्चा का केंद्र बन गया है। श्री गुतेरेश ने कहा है कि परिषद की संरचना पुरानी हो चुकी है। उन्होंने अफ्रीका के स्थायी सीट की मांग को सुधारों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने मानवाधिकार उल्लंघन के मामलों में वीटो शक्तियों को सीमित करने के प्रस्तावों का भी समर्थन किया। श्री गुतेरेश ने कहा कि विश्व में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार की आवश्यकता है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा कल पपुआ न्यूगिनी की आधिकारिक यात्रा पर पहुंचे। श्री मार्गरेटा ने पपुआ न्यूगिनी के 50वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री जेम्स मारापे से मुलाकात कर भारत की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं दी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पपुआ न्यूगिनी के गवर्नर जनरल सर बॉब बोफिंग दादा को एक पत्र के जरिए भारतीयों की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं भेजी। इसके अलावा विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर ने भी पापुआ न्यूगिनी के विदेश मंत्री जस्टिन ताकाचेंको को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। भारत और मोजाम्बिक के राजनयिक संबंधों के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में नौसेना का पहला स्क्वाड्रन मोजाम्बिक पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार स्क्वाड्रन में शामिल INSTIR, INS शार्दुल, INS सुजाता और ICGS सारथी कल मापुटो पहुंच गए। मंत्रालय ने बताया है कि 4 दिन की यात्रा के दौरान भारतीय स्क्वाड्रन मोजाम्बिक नौसेना के साथ विभिन्न संयुक्त प्रशिक्षण गतिविधियों में भाग लेगा। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। विश्व के कई नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर बधाई दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू और ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने प्रधानमंत्री मोदी को जन्मदिन पर बधाई दी। प्रधानमंत्री ने अपने जन्मदिन पर विश्व के कई नेताओं को शुभकामनाएं देने के लिए आभार व्यक्त किया है। एक रिपोर्ट।
सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने डोमिनिकन गणराज्य के प्रधानमंत्री रूजवेल्ट स्केरिट को उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया और दोनों देशों के बीच मजबूत मैत्री संबंधों की पुष्टि की। भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोबगे की सराहना करते हुए श्री मोदी ने कहा कि वे भारत और भूटान के बीच विशेष साझेदारी को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज को भी उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन की कामनाओं का जवाब देते हुए श्री मोदी ने कहा कि न्यूजीलैंड भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण भागीदार है। विश्व दर्पण के लिए वैष्णवी।
श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को उनके जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि वह इटली की मित्रता को बहुत महत्व देते हैं तथा द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए तत्पर हैं। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने यूरोपीय संघ की अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन को भी उनकी जन्मदिन की शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन संघर्ष के शीघ्र और शांतिपूर्ण समाधान के लिए भारत और यूरोपीय संघ की प्रतिबद्धता भी व्यक्त की। उधर श्रीलंका में प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के अवसर पर कल विशेष प्रार्थनाएं आयोजित की गईं। कोलंबो में बोहरा समुदाय ने हुसैनी मस्जिद में प्रार्थना सभा आयोजित की। वहीं महाबोधि सोसायटी के बौद्धिक भिक्षुओं ने प्रधानमंत्री मोदी के स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। त्रिंकोमाली में स्थित तिरुकोनेश्वर मंदिर और कटारगामा में भी अनुष्ठान किए गए। दक्षिण कोरिया और अमेरिका कोरियाई प्रायद्वीप के परमाणु निरस्त्रीकरण पर सहमत हो गए हैं। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार वाई सुंग लाक ने आज कहा कि हमारा अंतिम लक्ष्य कोरियाई प्रायद्वीप का परमाणु निरस्त्रीकरण करना है। उत्तर कोरिया की सहमति या असहमति का इस लक्ष्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। सियोल में वाई सुंग लाक ने यह दोहराया कि उत्तर कोरिया के परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए सबसे पहले उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों को रोकना जरूरी है। नाइजर के तिलाबेरी क्षेत्र में कल बंदूकधारियों ने एक हिंसक हमले में 22 लोगों की हत्या कर दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 15 लोगों को एक बपतिस्मा समारोह में भाग लेते समय गोली मार दी गई। हमलावरों के आगे बढ़ने पर आसपास के इलाकों में 7 और लोगों की मौत हो गई। मानवाधिकार समूहों का कहना है कि मार्च से जिहादी हिंसा में वृद्धि हुई है, जिसमें 127 से ज्यादा ग्रामीण और श्रद्धालु मारे गए हैं। दर्जनों घरों को लूटा और जला दिया गया है। जनरल अब्दुल रहमान चियानी के तख्तापलट के बाद नाइजर 2023 से सैन्य शासन के अधीन है। पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री इसहाक डार ने कहा है कि भारत ने द्विपक्षीय मुद्दों पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता को अस्वीकार कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा कि पाकिस्तान भारत सहित सभी पड़ोसी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध चाहता है। श्री डार ने यह टिप्पणी दोहा में अरब इस्लामिक आपातकालीन शिखर सम्मेलन से अलग अल जजीरा के दिए गए एक साक्षात्कार में की। नेपाल में 8 और 9 सितंबर को युवा प्रदर्शनकारियों द्वारा आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं में कर्णाली प्रांत में कुल 19 सरकारी और निजी इमारतें पूरी तरह नष्ट हो गई। कर्णाली प्रांत पुलिस कार्यालय के उप महानिरीक्षक माधव प्रसाद श्रेष्ठ ने बताया कि इनमें कई सरकारी भवन और कार्यालय शामिल हैं। न्यू चंडीगढ़ में भारत की महिला टीम ने दूसरा एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच 102 रन से जीत लिया है। भारत के 293 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए ऑस्ट्रेलियाई टीम 190 रन पर ही सिमट गई। तीन मैचों की श्रृंखला अब 1-1 की बराबरी पर है। उधर टोक्यो में विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में मौजूदा चैंपियन नीरज चोपड़ा ने पहले ही प्रयास में 84.85 मीटर के थ्रो के साथ फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। क्वालिफिकेशन के लिए 84.5 मीटर का आंकड़ा पार करना था। फाइनल मुकाबला कल खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की अर्थव्यवस्था प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती रहेगी। विश्व के कई नेताओं ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके 75वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सुधार महासभा में चर्चा का केंद्र बन गया है। नाइजर के तेलाबेरी क्षेत्र के गांव में बंदूकधारियों ने हिंसक हमले में 22 लोगों की हत्या की। और महिला क्रिकेट में चंडीगढ़ में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 102 रन से हराया, 3 मैचों की श्रृंखला 1-1 की बराबरी पर। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।